हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, दामोदर देश और सारे जीसीआर सीसीआर से भाग्यशाली श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद के अंतर्गत पांच रासो पांच अध्याय के अंतर्गत आज हम पूर्णाहुति का, जहाँ भगवान का महारास हो रहा है, उसका वर्णन सुनने जा रहे हैं। आज हमारे पास ये दो श्लोक हमको पाठ करने हैं। ये श्लोक तीन, अब आप भूमिका तो सुन चुके हैं। पहले भगवान ने गोपियों को बुलाया, स्वागत करके वापस जाने के लिए धर्म का उपदेश दिया। गोपियों ने अपने प्रणय गीत से भगवान को मना लिया। भगवान ने रास विहार शुरू किया और गोपियों को अपने सौभाग्य का थोड़ा सा मद हुआ। भगवान अदृश्य हो गए और गोपियाँ उनको ढूंढते ढूंढते बहुत अधिक भावों का प्रदर्शन करती हुई राधा रानी से मिलने के बाद पुनः जमुना के तट पे गोपी गीत गाया। तो भगवान कहीं गए तो नहीं थे, ऐसा लगता है कि उनके बीच में चुनरी ओढ़ के छुपे हुए थे और उनके बीच में प्रकट हो गए। गोपियों ने उनको पकड़ लिया, अपनी चुनरियों को बिछा के आसन बना दिया और उनसे बहुत बड़े प्रश्न उत्तर हुए। ये बड़े प्रेम के प्रश्न उत्तर अद्भुत हैं, और जिसमें भगवान ने कहा कि गोपियों, हम गोपियाँ हम आपके इस प्रेम और त्याग का ऋण उतार नहीं सकते, हम आपके ऋणी हो गए। ब्रह्मा जी के जीवन तक भी हम ऋण उतारने का प्रयास करें उतार नहीं सकते। हमारे को आपको कष्ट देना उद्देश्य नहीं था, आपके प्रेम को अंतरंग करना था। और फिर गोपियों का दुख दूर हो गया और पुनः महारास शुरू हुआ। तो अब महारास जो शुरू हुआ, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, गोपियां प्रसन्न हो गई और फिर महारास शुरू हुआ। तो कैसे महारास की मंडली कैसे बनी हुई थी, कृष्ण उसमें कैसे नृत्य कर रहे थे और किसने देखा इस रास विहार को और कितना देखा, इसका वर्णन इस तीसरे श्लोक में है। रास उत्सव संप्रवृतो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्य द्वयो द्वयो प्रविष्टेन गृहेतानां कंठे स्वनिकटं स्त्रिया यम मन्येरन नभस्तावत् विमानशत संकुलम् दैवोकसां स दाराणाम् औत्सुकया पहिर्तात्मना। सो ये श्लोक में ये भाव है, रास उत्सव सम प्रवर्तो, सम्यक रूप से, बहुत अच्छी रूप, बहुत अच्छे प्रकार से रास उत्सव शुरू हुआ। बड़े संप्रवृतो, संप्रवृतः सम्यक, सभी प्रेरित, सारे के सारे प्रेरित हो गए। किसके लिए? केवल रास के लिए नहीं, उत्सव के लिए। उत्सव का मतलब ऐसा जिसमें आनंद हो, सब कुछ भूल जाए। उत्सव उत कहते हैं ऊपर, सब का मतलब इतना आनंद में विभोर हो के, हाँ, इतना कि संसार शरीर सब कुछ भूल जाए। और किसने शुरू किया ये रात रास उत्सव, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। कृष्ण ने शुरू किया, गोपियों ने शुरू किया, नहीं कुछ मालूम नहीं है। गोपियों ने क्या किया, गोपी मंडल मंडित, गो एक रास मंडल होता है, एक चबूतरा होता है, उसको रास मंडल कहते हैं, और उसके बीच में असल में राधा रानी विराजमान होती है, और वो ही राशेश्वरी है, वो राश की स्वामिनी है, उसकी अनुमति से ही रास शुरू होती है। ये जहां अभी भी ब्रज में जहां भगवान ने रासें की है, रास लीलाएं की है, वहां सब रास मंडल का चिन्ह बने हुए हैं, और ये रास मंडल केवल ब्रज भूमि में ही संभव है, और कहीं हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये केवल माधुर्य प्रेम के भक्तों के बीच में, और ये एकमात्र वृंदावन में संभव है, और कोई नहीं। ऐसे ऐसे हम जानते हैं कि गोपी तालाब जो द्वारका में है, वहां गोपियों को भगवान ने बुलाया था, और सुबह उठ के वो गोपियों ने ही द्वारका का नाम द्वारका रखा। पहले तो उसका नाम कुश स्थली था, द्वारावती था, आनर्त देश था, परंतु गोपियों ने कहा द्वारका है, द्वारका है, दरवाजा कहाँ है, दरवाजा कहाँ है, तो द्वारका हो गया। वहां रानियों ने कहा कि सब गोपियां अगर यहाँ आई है तो रास हमने सुना है, बड़ा अच्छा होता है, रास का आयोजन किया जाए। तो भगवान ने राधा रानी को प्रार्थना की, विनती की सबने मिलके, तो वहां एक रास मंडल का चबूतरा बना हुआ है गोपी तालाब के पास। रास मंडल की तैयारी हुई, लेकिन राधा रानी ने कहा यहाँ रास की स्फूर्ति नहीं हो रही है, यहाँ रास नहीं हो सकती, इतने में संतुष्ट हो जाओ। तो गोपियों ने मंडल मंडित, गोपियों ने अपने अपने मंडल बना दिए। अब मंडल एक लंबा, क्योंकि गोपियों के बहुत युद्ध थे यहाँ, जब ये गोपी मंडल मंडित देखते हैं तो इस रास का तो हमको कहने का भी अधिकार नहीं है, सुनने का भी अधिकार नहीं है, हम तो भौतिक संसारी हैं, परंतु भगवान गौर हरि ने कृपा करके सात मंडलियां जगन्नाथ के सामने जो कीर्तन की बनाई, और फिर हर मंडली के बीच में नृत्य करते थे, और ऐसे लगता था हर मंडली वाला समझता था हमारे बीच में खड़े हैं, और जब महाप्रभु नृत्य करते थे सात मंडलियां इकट्ठी होके एक बड़ा मंडल बना लेते थे, और प्रतार रुद्र ऊपर से देख रहे थे तो एक महाप्रभु सब में कैसे नृत्य कर रहे हैं। तो चैतन्य चैतन्यमृत में इस हरिनाम संकीर्तन के सात मंडलियों का वर्णन है, और हर मंडली में कौन कौन भक्त है उनका भी वर्णन है। तो ये तो महाप्रभु ने कृपा करके इसका हमारे को एक जगन्नाथ के सामने रथ यात्रा में जो सात मंडलियों का कीर्तन है, और महाप्रभु सबके बीच में कैसे कीर्तन करते हैं, इसका थोड़ा सा संकेत मिलता है। तो गोपियां मंडल मंडित हो गई, तो गोपेश्वरेण कृष्णेन, अब या योगेश्वरेण कृष्णेन, कौन सा कृष्ण प्रवेश हुआ उनके बीच में, योगेश्वर, जो अपनी योग शक्ति से, अपनी लीला शक्ति से अपने आप को एक को अनेक कर सकता है। प्रविष्टेण, प्रविष्ट किया, इसका मतलब रास की मंडली में मंडल पहले तैयार हो गया, उसमें श्री कृष्ण योगेश्वर प्रविष्ट हुए, और प्रविष्ट हुए तो क्या किया और कहां हुए, ग्रहीता नाम कंठे स्वनिकटम स्त्रीय, जो अपने पास में गोपी थी, ये गोपियों का पहले श्लोक में वर्णन है कि सारी ही गोपियां भगवान से के योग्य प्रेम करने वाली थी, यहां लिखा स्त्री अनवित्तः प्रीतिर अन्यो अन्य अद्भुत भाव ही रास किरणाम अनुवर्ति ही, ये बड़ी अनुवृत्ति गोपियां थी। अनुवृत्ति का प्रभुपाद के शिष्य ने शब्द अर्थ लिखा है, बड़ी श्रद्धावानी गोपियां थी, प्रेममयी गोपियां थी, ये सामान्य व्यक्तियों के साथ नहीं है, ये गोविंद का गोपियों के साथ जो रास क्रीड़ा है। तो क्या किया, ग्रहितान, अपने हाथ को भगवान की जो भुजाएं हैं जिसको कभी कभी कहते हैं कि वो सर्प की तरह कंठ में, गोपियों के कंठ को, कंठ का मतलब है जो ये गर्दन का पीछे का हिस्सा है, उस कंठ को स्वनिकटम जो उनके पास थी उनके गर्दन के ऊपर हाथ रख दिया, कंधे के ऊपर हाथ रख दिया और कितनों के बीच में गए, तासाम मध्य द्वयो द्वयो। ये भी एक समझने की बात है, दो गोपियां खड़ी हैं, एक इधर एक कृष्ण आ गया, दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण इधर आ गया, एक कृष्ण इस तरफ आ गया, तो ये जो ये हाथ की दो गोपियां ये ऐसे खड़ी और दो कृष्ण ऐसे खड़े हैं। अब एक हाथ एक गोपी के कंधे पे, हाथ एक दूसरे के कंधे के ऊपर, एक कृष्ण का और दूसरे, तो एक गोपी एक ही कृष्ण को देखती है, दो गोपियों के बीच में कृष्ण ऐसा नहीं, ऐसा द्वयो द्वयो का अर्थ ये है और इसका चित्र बना के भी कुछ आचार्यों ने दिखाया है। और दोनों के बीच में हो तो उसके दोनों कंधों के ऊपर, तो आश्चर्य लगेगा कि दो कृष्ण कैसे हो जाएंगे, परंतु योग माया ये भी कर सकती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं। तो प्रवेश के तासाम मध्य द्वयो द्वयो, दो दो के बीच में, वो दो दो की जोड़ी में खड़ी थी और ये दो इन दोनों के बीच में एक कृष्ण आ गया, दोनों के बीच एक कृष्ण और इस दोनों के इस तरफ कृष्ण उस तरफ कृष्ण। ये जो भगवान श्री कृष्ण का विस्तार है, दो प्रकार के विस्तार स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हैं, विलास और प्रकाश ऐसे कुछ इनके नाम है, अब मेरे को स्पष्ट रूप से ध्यान में नहीं आ रहे हैं कि दोनों में क्या है। एक श्री कृष्ण अपने ही समान दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं, परंतु वो रूप दोनों एक जैसे नहीं होते हैं, जैसे कृष्ण और बलराम दोनों हैं एक ही, परंतु रंग अलग है, रूप अलग है, भाव अलग है। और दूसरा कृष्ण एक से अनेक होते हैं, सभी एक जैसे होते हैं और भाव भी एक जैसे होते हैं। वो कृष्ण का ये जो विलास है वो ये है रास मंडली में, परंतु एक कृष्ण अनेक हो गए, सब गोपियों के दो दो के मध्य में एक हो गए, तो असली कृष्ण कौन है? असली कृष्ण का मतलब आदि कृष्ण कौन है जिससे ये सब विस्तार हुआ? तो इसलिए हम पढ़ेंगे कि सारे रास मंडल के मध्य में कृष्ण एक गोपी के साथ खड़ा नृत्य कर रहा था, वो गोपी राधा रानी थी, जो राधा रानी के साथ खड़े हैं वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण और सब उनके विस्तार। कंठे स्वनिकटम स्त्री, अपने निकट में खड़ी गोपी के कंधे के ऊपर हाथ रख दिया। यम मनेरम नभस्तावद, यम मनेरन, और यम मनेरम का अर्थ है मन मानना। जब ये सब हो गया तो उस समय ऐसा नहीं खड़े हो गए, नृत्य शुरू हो गया और नृत्य से जो एक आनंद का उल्लास हुआ उसका विचार करके मनेरन मान कर नभ आकाश में उस समय कितने ही वैकुंठ के विमान स्वर्ग के विमान प्रकट हुए, कितने शत हाँ सैकड़ों वैकुंठ के विमान पड़े हुए, संकुलम बस इतना भर गया पूरा वैकुंठ आकाश में, ऊपर देखो जैसे तारे दिखते हैं बोला, लेकिन चांद से ऊपर थे क्योंकि चांद की चांदनी में ही तो रासलीला हो रही थी, इतने सारे विमान अगर आगे आ जाएं तो चांद का प्रकाश ही नहीं होगा, तो चांद से ऊपर ये विमान सारे सारों से आकाश भर गया। तो विमानों में कौन बैठे थे? बोला बोल रहे हैं दाराणाम, दिवी दाराणाम, देवता अपनी पत्नियों के संग, मानो के शंकर जी पार्वती के संग है कि ब्रह्मा ब्रह्माणी के संग है और इंद्र सची के संग है, तो ऐसे सब अपनी अपनी पत्नियों के संग क्यों क्या करने आए? उत्सक्य, बड़ी उत्सुकता के साथ, क्या हो रहा है ऐसा, कभी ये तो कभी हमारे यहाँ होता ही नहीं है, स्वर्ग में तो इसका सोचा ही नहीं जा सकता, ये क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, परंतु देख नहीं पाएंगे, क्या नहीं देख पाएंगे, गोपियों को नहीं देख पाएंगे। केवल कृष्ण के नृत्य को ही देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि वो दास भाव के भक्त हैं और रस का भास हो जाएगा, इसलिए वो देखेंगे कृष्ण की लीला को केवल, और पुष्प वृष्टि करेंगे, ना गाएंगे नाचेंगे। तो ये आगे आएगा कल के श्लोकों में। अपहृत आत्मानाम, अपहृत आत्मानाम का मतलब, जैसे एक नकारात्मक इसका भाव होता है कि किसी का मन हर लिया जाए, किसी का मन माया हर लेती है, लेकिन इन देवता और देवताओं के स्त्रियों का मन भगवान की इस रास लीला ने हर लिया। तो ये सकारात्मक मन को हरना है। अगर मनोहर कृष्ण हमारा मन मुरली बजाकर हर ले तो हमें सौभाग्य हमारा, नहीं तो माया ने तो सबका मन हर ही लिया है। परंतु यह सौभाग्य है कि इन देवताओं के नाम जब लिखे हैं तो शंकर और ब्रह्मा का ही मुख्य रूप से नाम लिखा है, कि ये तो भागवत है सारे, इनको इनका मन हर लिया। अब अगर इसका अनुवाद पढ़ें अनुवाद, संपूर्ण संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान कृष्ण उन दो दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण प्रकट होकर उन सबों के गले में हाथ डाल दिए। इस तरह एक गोपी के बाद एक कृष्ण हो गए। फलतः सभी गोपियां ये समझती थीं कि श्री थी कि हमारे हमारे कृष्ण हमारे साथ हैं, और हमारे कृष्ण हमारे साथ हैं। इस तरह गोपियों के मंडल से सुशोभित भगवान श्री कृष्ण ने रास उत्सव प्रारंभ किया। उस समय रास उत्सव के दर्शन की लालसा से उत्कंठित सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ अपने विमान में बैठकर वहां आ गए। इस तरह देवताओं के सैकड़ों विमानों से वहां का आकाश भर गया। ये अनुवाद है हिंदी में इसका श्रीधर स्वामी के द्वारा, और श्रीधर स्वामी ने भाव लिखा है श्री भगवान के सानिधान सनिधान, श्री भगवान के सनिधान को श्री सुखदेव जी रास उत्सव, ये चार अक्षर जिसमें अधिक हैं ऐसे डेढ़ श्लोक से बतलाते हैं। ये डेढ़ श्लोक में रास उत्सव, ये भगवान भगवान के सनिधान, सनिधान हिंदी शब्द है, कोई इसका अर्थ जानता है क्या? आप में से बोल सकता है सनिधान किसको कहते हैं? श्री भगवान के सनिधान को सुखदेव जी रास उत्सव से ये चार अक्षर जिसमें अधिक हैं ऐसे डेढ़ श्लोक, मतलब इसका मतलब श्लोक में चार अक्षर ज्यादा है, से बतलाते हैं। जो मंडल रूप से खड़ी थी उन दो दो गोपियों के बीच में प्रविष्ट तथा उन्हीं के द्वारा उन दोनों गोपियों के गले में अपना हाथ डाल दिया था, अतएव सभी गोपियां श्री कृष्ण के द्वारा आलिंगित थीं। इसके कारण सभी स्त्रियां यही मानती थी कि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण मुझसे ही आलिंगित कर रहे हैं, इसलिए भगवान दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हुए थे। प्रश्न यह है कि श्री कृष्ण तो एक ही है, किसी ने लिखा है सनिधान का अर्थ क्या? चैट में कुछ दिख रहा है, सानिध्य से, सानिध्य से, ओके, सनिधान, सनिधान, सानिध्य से, ठीक, धन्यवाद। श्री भगवान के सानिध्य से तो उत्सव क्यों हुआ? श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ तो उत्सव हुआ, तो भगवान उत्सव हमारा, इसलिए कभी कभी भगवान को कहते हैं गोपियों के नैनों का उत्सव है। आंख किसके लिए है? कृष्ण को देखने के लिए, तो हमारा जीवन उत्सवमय हो जाएगा। कान किसके लिए है? कृष्ण के नाम को सुनने के लिए, तो हमारा जीवन उत्सवमय हो जाएगा। जीभा किसके लिए? कृष्ण का नाम गाना, कृष्ण का प्रसाद पाना, तो हमारा जीवन उत्सवमय हो जाएगा। ओके, अपना हाथ डाल दिया, अतएव सब ये सीख समझे। प्रश्न ये है कि श्री कृष्ण तो एक थे, वे सभी तो गोपियों के बीच में कैसे प्रवेश होकर गए? किंचित जब वे सबों के सानिक्त थे, तब वे कैसे उनको प्रतीत होता था कि मेरे कृष्ण मेरे ही सनिकट है? इतने सारे होते तो एक क्यों दिखता था? इसके उत्तर में सुखदेव जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, फलतः वे अचिंत्य शक्ति संपन्न हैं। उस समय देवताओं के मन में उस रास को देखने की उत्सुकता व्याप्त हो गई, फलतः अपनी पत्नियों के साथ विद्यमान देवताओं के विमानों से वहां का आकाश भर गया। ये भाव है श्रीधर स्वामी का, जो आदि टीकाकार है हमारे भागवत के। अब हम अपना ये भाव देख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, रास उत्सव आरंभ हुआ, गोपियां मंडल में खड़ी हुई। मंडल का मतलब जैसे जैसे ये अपने गुजरात में विशेष रूप से गरबे होते हैं, घूमते हैं, पूरा एक गोल चक्कर हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को विस्तृत किया, ये विलास है कि प्रकाश है, मेरे को स्पेसिफिक में याद नहीं आ रहा है ये भगवान का कौन सा विस्तार है, जिसमें भगवान सब एक जैसे हैं, एक रूप है, एक वेश है, एक भाव भी है मन का, और दो दो गोपियों के बीच में भगवान एक प्रकट प्रविष्ट हुए। जो योगेश्वर भगवान है, उन्होंने अपने कर कमल गोपियों के कंधों के ऊपर रख दिए जो उनके निकट थी, और देवता अपनी पत्नियों के संग आकाशों में रास के उत्सव का साक्षी बनने के लिए साक्षी उत्सुकता में साक्षी शब्द लिखा है प्रभुपाद ने, प्रभुपाद के शिशु ने, और शिला और उन शिशु ने ये श्लोक लिखा है जो जीव गोस्वामी ने उद्धृत किया है बिलो मंगल का। नीचे आगे आएगा जीव गोस्वामी की टीका में। श्री बिलोमंगल ठाकुर ने श्लोक लिखा है, अंगना नाम अंतरा माधवो गोप अंगना नाम के आगे गोप लगा दो, तो गोप अंगनाओं के बीच में, गोपियों के बीच में माधव है। आश्चर्य है कि माधव है लक्ष्मीपति, लेकिन लक्ष्मी को यह सौभाग्य नहीं है जो इन गोपियों को प्राप्त हुआ है, और लक्ष्मी इस सौभाग्य के लिए आज भी ब्रज में जमुना के तट पे बेल वन में तपस्या कर रही है, लेकिन प्रवेश नहीं कर पा रही है, और माधव गोपियों के बीच में है। माधवम माधवम चांत्रेण अंगना, देखो तो सब जगह माधव ही माधव गोपियों के बीच में है, और माधव के दोनों ओर गोपियां ही गोपियां हैं, ये एक आश्चर्य है। इसके लिए आगे सातवें श्लोक में आएगा कि सोने के सुंदर मणियों के बीच में एक जैसे एक नील मणि हो कोई, वो चमक रही थी, एक नील मणि सबके बीच में चमक रही थी। इतना कभी कभी भाव देते हैं कि इतना फुर्ती से, इतना कलात्मक ढंग से वो नृत्य कर रहे थे कि बीच से एक एक गोपी के बीच से घूम के बीच में आ जाते थे, लगता था सब जगह खड़े हैं और बीच में भी खड़े हैं। इसलिए लिखा है, इत्थम आकल्पिते मंडले मध्यगः, ऐसे लगता था कि हर एक मंडल में है, परंतु संजगहो वेणु देवकी नंदनः, परंतु ऐसे लगता था कि सबके बीच में रास मंडल के बीच में वेणु बजा रहे राधिका के संग में देवकी नंदन। यहां राधिका के संग नहीं लिखा है, नीचे लिखा है, चक्रवर्ती पाद ने लिखा है, गोपियां प्रेम से परिपूरत पागल हो गई। पागल नहीं लिखना चाहिए, असल में पागल एक प्रकार का पागलपन है, लेकिन ये है उन्माद, ये उन्माद प्रेम का है, इसलिए उनको ये दिखाई नहीं दिया कि कृष्ण एक गोपी के साथ एक कृष्ण है। वो समझते एक कृष्ण मेरे साथ है, मैं अकेली कृष्ण, अकेला और कोई नहीं। और देवता और उनकी पत्नियां भगवान के बहुत सारे विस्तार देख रही थी, रास लीला देख रहे थे, इसलिए बड़े आश्चर्यचकित हुए। चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं, ये श्लोक कृष्ण का गोपियों के साथ रास में प्रवेश का वर्णन कर रहा है, और इस रास ने ऐसे अमृत का उल्लास प्रकट किया जैसे चातक जो पक्षी होता है वो है भक्त, उनके आंखें और मन इस रास का श्रवण करने से, दर्शन करने से उल्लास में, उत्सव में आनंदित हो जाते हैं, इसलिए इसको उत्सव कहा गया है। तो गोपियों को उत्सव नहीं, उत्सव किसको मिला? ऊपर जो बैठने वाले देवता थे और जो आज सुन रहे हैं उस उत्सव को, उनके लिए ये वो जो सुन, इसको सुनने का अधिकारी कौन है? जो चातक पक्षी की तरह केवल स्वाति नक्षत्र में गिरी हुई बूंद को पिएगा तब उसके पेट में मोती बनेगा, केवल कृष्ण के प्रेममयी माधुरी लीला के जो रसिक भक्त हैं और इसी लीला के श्रवण से उनके हृदय में कृष्ण प्रेम रूपी मणि मोती प्रकट हो रहा है और उसी प्रेम में मदमस्त रहते हैं, उनके लिए ये रास लीला के उत्सव को सुनने का अधिकार है, जिसका चातक जैसा भाव है कि और कोई पानी नहीं पिएगी, केवल स्वाति नक्षत्र का पानी पिएगी, नहीं तो प्यासे मर जाएंगे। तो ये भगवान के जो प्रेमी भक्त है उनके लिए ये बहुत बड़ा उत्सव है। सर्व रास मनोराम, ये रास लीला सर्वोत्तम, भगवान की लीलाएं बहुत, लेकिन सर्वश्रेष्ठ लीला रास लीला है। सर्व लीला मनोराम, सर्व लीला श्रोमणि है, इसलिए उत्सव है। और इसकी जो इस उत्सव की आरंभ, जो उत्सव का आरंभ हुआ वो बहुत ही शुद्ध और सिद्ध प्रणाली से हुआ, इसलिए सम्यक सम प्रवृत्तः, सम्यक प्रवृत्तः, अच्छी तरह से इसका आयोजन किया गया। क्यों नहीं होता, कौन करेगा इसका आयोजन? अब ये कहते गोपियां मंडल में खड़ी हो गई और कृष्ण उनके दो दो के बीच में प्रविष्ट हुए। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि इस श्लोक में रास कीड़ा जो है, रास कीड़ा, कीड़ा का मतलब खेल लीला, वो कृष्ण ने शुरू की, ऐसी बात नहीं है। ये किसने शुरू की? ये है किसने शुरू की, कृष्ण ने रास नृत्य शुरू किया ऐसा नहीं समझना चाहिए। कृष्ण इसमें कर्ता नहीं है रास का, रास लीला करती है, कर्ता कौन है? रास लीला। और ये क्या है? सब पात्र है। कृष्ण ने रास लीला को स्वतंत्र कर दिया अपना कार्य शुरू करने के लिए। इसका मतलब लीला शक्ति जो भगवान की ये आयोजन करती है, इसलिए एक इसको समझने का भाव ये है कि जैसे कोई हम ड्रामा देखते हैं तो ड्रामे का एक राइटर होता है जो इसका स्क्रिप्ट लिखता है, तो इस रास लीला के स्क्रिप्ट लिखने वाले तो कृष्ण है क्योंकि उसके अलावा तो नहीं हो सकता है। फिर एक डायरेक्टर होता है, निर्देशक होता है, वो निर्देशक है ये लीला शक्ति, और फिर कृष्ण उसमें एक अभिनेता बन जाते हैं, गोपियां अभिनेता बन जाती हैं, जैसे डायरेक्टर नचाता है ऐसे नाचती और अपने आप को भूल जाती हैं। तो यहां कृष्ण जो है वो रास लीला को आरंभ करने वाला नहीं है, रास लीला स्वयं ये रास विलास का सारा प्रबंध करके उसको शुभ आरंभ किया, प्रवृत्त हुई। कृष्ण क्या था, कृष्ण उसमें खड़े थे कैसे, एक रास का जैसे उसके एक एक अभिनेता थे, उसके एक पात्र थे इस उत्सव के। इस प्रकार अनेक कृष्ण प्रकट हो गए, और इतने कृष्ण प्रकट हो गए और इतनी कृष्ण की शक्तियां प्रकट हो गई लीला में के ये रास उत्सव सर्वश्रेष्ठ हो गया। सब ब्रह्मांडों में इस उत्सव की महिमा का वर्णन होने लगा, और इसलिए लक्ष्मी इस उत्सव में प्रवेश करने के लिए बहुत प्रयास कर रही है, परंतु प्रहलाद प्रयास कर नहीं पाती है, ये चक्रवर्ती पाद लिखते हैं। तो कृष्ण गोपियों के बीच में कैसे घड़े खड़े थे, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं। जो गोपी उनके निकट थी उनके गलबाइयां गलबाही करके खड़े थे। छठे श्लोक में ये वर्णन आएगा कि वो नीलमणि की तरह थे, वो एक वैदुरी मणि की तरह थे। और गोपियां कैसे थी, गोपियां थी स्वर्ण के आभूषण, गोपियां स्वर्ण का आभूषण बनी, और उन कई आभूषणों में मणि एक ही थी वैदुरी, और सबके ऊपर उसका प्रकाश पड़ रहा था। एक मणि वैदुरी ऐसी होती है जो स्वर्ण मंडित में सबके ऊपर अपना प्रकाश डाल रही थी, सबके साथ जुड़ी हुई थी, क्योंकि जो कृष्ण के लिए शब्द है वो नीलमणि या वैदुर्य मणि के लिए वो है एक वचन में, तीसरे श्लोक में, क्योंकि दो गोपियों के बीच एक कृष्ण है। इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण उनके बीच में खड़े हो गए, पर खड़े हो गए उधर जाके दो दो के बीच में खड़े हो गए, ऐसा नहीं है। फिर क्या किया उसने, रास लीला शुरू किया, नृत्य शुरू किया, वो बीच में खड़े थे, रास मंडल में खड़े थे, बीच का मंडल में कृष्ण खड़े थे। वहां से बहुत तीव्र गति से, इतनी कैसे तीव्र गति, ये शब्द लिखा है कि जैसे दिवाली के दिन फिरकनी घुमाते हैं ना, जो जैसे घूमती है फायर ब्रांड, ऐसे तीव्र गति से घूम रहे थे कि कभी बीच में कभी एक गोपी के साथ, ऐसे 33 करो कितनी गोपियों का यहां लिखा है, बीच में आ गए 300 कोटि 33 करोड़ गोपियों के बीच में एक के बाद एक के पास, इतना तेजी से घूम रहे थे जैसे कोई फिरकनी घूम रही है, और हर एक ऐसे देख रहा था कि कृष्ण बीच में खड़ा है या कृष्ण मेरे साथ खड़ा है। इसलिए बिलो मंगल ठाकुर ने यह गाया है, माधव दो गोपियों के बीच में खड़े थे, जो हम पहले श्लोक पढ़ के आए हैं। और फिर यह भी कहा कि माधव बीच में बांसुरी बजा रहे थे, और रासलीला में नृत्य भी होता है और गान भी होता है, और बहुत सुंदर गाते हैं, आगे आएगा श्लोकों में। और इस उत्सव की नृत्य वाद्य और गान ये सब इसके अंदर मिले हुए हैं। कृष्ण को यहां योगेश्वर कहा गया है। महाविष्णु जो सारे कार्य उनके द्वारा जो होते हैं, उनके सारे कलाओं का सागर है, और योग का एक अर्थ है योग माया, जो भगवान की शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है। तो योग माया के स्वामी श्री कृष्ण, योग माया ने समझा कि ये हर गोपी को आलिंगन एक ही समय पे करना चाहता है, तो उन्होंने ये सारी व्यवस्था कर दी। और समस्या का समाधान हो गया। ऐसे ये तो यहाँ एक की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान है कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश हुए तो हर एक व्यक्ति से ऐसे मिल रहा था कि मुझसे ही मिल रहे हैं। राम जी ऐसे जब प्रवेश किए तो हर एक व्यक्ति समझ रहा था मुझसे मिल रहे हैं। तो भगवान ऐसे चैतन्य महाप्रभु हर मंडली में नृत्य कर रहे थे, ये भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं। योगी भी एक से पचास सोबरी हो सकता है, कर्दम एक से नौ हो सकता है, परंतु वो सदा के लिए रह नहीं सकते हैं। लेकिन भगवान तो आश्चर्य है, जब जो योगी ऐसे करते हैं तो योगेश्वर क्यों नहीं कर सकता। इनको दो प्रकार से समझा जा सकता है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं दो गोपियों के बीच में कृष्ण प्रकट हुए। एक ये भाव है कि इधर भी गोपी बीच में कृष्ण हो, तो इस स्थिति में ऐसे लगेगा कि हर गोपी के एक हाथ एक कंधे पे, दूसरा हाथ दूसरे कृष्ण का दूसरे कंधे पे। तो ये तो उचित नहीं है कि दो कृष्ण कैसे होंगे, एक इधर कंधे पे रखे एक उधर रखे। परंतु फिर भी वैसे गोपियां भगवान के स्पर्श करने से आंखें बंद कर देती थी, कुछ पता नहीं लगता था, योग माया ऐसा करती थी। तो योग माया ये भी कर सकती है, परंतु दूसरा जो है कि दो के बीच में एक था, तो एक गोपी अगर दूसरी तरफ देखे तो गोपी ही देखेगी, एक तरफ देखेगी तो कृष्ण देखेगी। तो ये ज्यादा जो है उसमें कोई संदेह नहीं है। तो हर गोपी ने समझा कि कृष्ण हमारे संग खड़े हैं। ऐसे भगवान का संबंध हम सबके साथ भी व्यक्तिगत है। ऐसे जब श्री कृष्ण के सारी गोपियां, कृष्ण जब यहां से चले गए थे द्वारका, तो गर्ग संहिता में है कि सब गोपियों ने, राधा रानी ने एक बिंदु सरोवर की महिमा सुनी कि उसमें जो एक बार स्नान करेगा उसको कृष्ण से कभी वियोग नहीं होगा, तत्काल कृष्ण का दर्शन होगा। तो राधा रानी इन्हीं सारी 33 करोड़ गोपियां जितनी भी है इनके संग में यहाँ से रथ में चढ़ के और बिंदु सरोवर गई। एक यात्रा में आपके दामोदर देश के भक्त बिंदु सरोवर दर्शन करने गए थे, स्नान किया था, वहाँ प्रसाद पाया था, और उसी समय कोई ग्रहण का समय था, और ये कुरुक्षेत्र के युद्ध के उपरांत की बात है, कुरुक्षेत्र में नहीं जा सकते थे, वहाँ का ऐसा अभी सफाई नहीं थी। तो भगवान श्री कृष्ण भी सारी अपनी 16,108 रानियाँ और यदुवंशियों के साथ वहीं आए थे, और राधा रानी स्नान कर रही थी, गोपियाँ चारों ओर से सुरक्षा में खड़ी थी। राधा रानी अभी नहा ही रही थी तब तक श्री कृष्ण का संदेश आ गया कि राधा रानी से मिलना चाहते। तो ये तो सत्य हुआ कि बिंदु सरोवर में स्नान करने वाले को कृष्ण का तत्काल संजोग मिल जाता है। फिर राधा रानी जब भगवान की रानियों से वहां मिली तो सब रानियों ने कहा कि इतनी गोपियां एक कृष्ण से प्रेम करती हैं, हम इतनी सब कृष्ण से प्रेम करती हैं। तो राधा रानी ने कहा कि चांद एक होता है, चकोर असंख्य होते हैं, और हर चकोर समझता है कि चांद मेरा है, और ये आश्चर्य है कि कृष्ण चंद्र एक है और प्रेम करने वाले सारे ही जीव हैं, किन किसी को याद आ गया है किसी को याद नहीं आया है। जिनको याद आ गया है वो कृष्ण के प्रेम में आनंद ले रहे हैं, जो कृष्ण प्रेम को अभी तक याद नहीं कर पाए हैं उनको याद दिलाने के लिए ही कृष्ण भावना अमृत संघ की संस्थापना श्रील प्रभुपाद ने की है। ये चैतन्य महाप्रभु के आने का उद्देश्य ही एक था, चिरादित्तम निज गुप्त वित्तम स्वप्रेम नामा अमृतम, अपने प्रेम को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे, उसी प्रेम को प्रकट करने के लिए आए थे। तो ये रास लीला से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारा कृष्ण के प्रति जो प्रेम हमारे हृदय में कृष्ण ने भर के भेजा है इसको प्रकट कैसे किया जाए। तो हमारे लिए भी व्यक्तिगत कृष्ण है, एक भक्त के लिए एक कृष्ण है, और हर भक्त का स्वार सरोरोहम लिखा है, श्रुणताम श्रद्धया नित्यम गृणतश्च चेष्टितम कालेन अति दीर्घेण भगवान विशते हृदय प्रवेष्ट करण रंध्राणाम स्वानाम सरोरोहम। भगवान का प्रेम से ऐसे रोज नित्य भागवत सुनोगे ना तो कानों के द्वारा कृष्ण प्रकट होके आपके हृदय में आपका जैसा भाव होगा वैसे ही आपसे के साथ व्यवहार करेगा। आपने बेटा मान लिया तो छोटा सा लाला बन के आ जाएगा, आपने मित्र बन गया मान लिया तो मित्र बन के आ जाएगा, और प्रेमी बन गया माना तो बांसुरी लेके आ जाएगा। हर एक के हृदय में उसके अपने भाव के अनुरूप आएगा। तो यहां उसी भाव को बिलव मंगल के दे रहे हैं कि माधव सबके बीच में खड़े थे और सबके साथ भी खड़े थे। कोई कहे देवकी नंदन क्यों लिखा है, आगे हमारे आचार्यों ने लिखा है कि शास्त्र में मेरे हरिवंश प्राण में यशोदा के नौ दो नाम है, यशोदा और देवकी। एक नाम यशोदा, क्योंकि देवकी नंदन यशोदा नंदन जो स्वयं भगवान है उसकी ये सारी लीला है, तो देवकी और यशोदा दोनों ही यशोदा के नाम है। कहते हैं वास्तविक नाम उसका भी देवकी है, परंतु सबको यश देती थी इसलिए उसका नाम यशोदा है। फिर वासुदेव नंद कैसे वासुदेव हो जाएगा, बोला वो वसु द्रोण था ना, वसु तो वसुदेव है, तो नंद भी वसुदेव है, तो उसका भी नाम वसु हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो ये बहुत बड़ी आचार्यों ने इसके ऊपर खोज की है। और आगे लिखा है भगवान कहां बीच में खड़े थे, बोला ब्रजेश्वरी राधा को आलिंगन करके और बांसुरी बजा रहे थे। ये है भगवान कृष्ण का सत नाम स्तोत्र, जो भगवान का सहस्र नाम है, सत नाम सो नाम वाला स्तोत्र है, उसमें लिखा है रास क्रीड़ा को, रास क्रीड़ा करणम, रास क्रीड़ा की आज्ञा। यहां जब रास मंडलियां प्राचीन काल से जो ब्रज में है उनका जब कोई लीला शुरू होती है तो पहले रास लीला होती है, राधा कृष्ण विराजमान होते हैं, उसकी आरती होती है, गोपियां खड़ी होती हैं, फिर गोपियां राधा रानी को प्रार्थना करती हैं कि श्री जी अब रास क्रीड़ा का समय हो रहा है, और तब कृष्ण राधा रानी से आज्ञा मांगते हैं कि अब रास क्रीड़ा शुरू की जाए। तो यहां रास क्रीड़ा करणम, राधा रानी वो है रास लीला की रासेश्वरी। उस समय हजारों सैकड़ों ब्रह्मा, जैसे कि ब्रह्मा आदि देवता अपनी पत्नियों के संग अपने विमानों में चढ़कर इस रास लीला का दर्शन करने के लिए आए। अब चक्रवर्ती पाद स्पष्ट लिखे हैं कि जो रास लीला में आलंगन चुंबन आदि का जो दर्शन है वो ये नहीं कर सके, क्योंकि वो दास भक्त है, और ये योग्य माया ने ऐसे कर लिया कि केवल जो पुरुष थे स्वर्ग के वो एक कृष्ण को ही देख रहे थे, गोपियों को देख ही नहीं रहे थे। यहां कहते हैं दोपहर के समय रोज राधा कुंड पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी और राधा पक्ष के गोपियों का मिलन होता है, नौका विहार होता है। नौका दिखती है, कृष्ण दिखता है, लेकिन गोपियां नहीं दिखती। ये सारा योग माया ऐसा कार्य करती है कि केवल कृष्ण दिखता है, और ये रोज की दोपहर की लीला है, मध्यकाल की लीला है। सूर्य कुंड के ऊपर जाते हैं पूजा के लिए, और कृष्ण भी ग्वाल बालों के बीच से किसी बहाने से निकल के आ जाते हैं। जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं रास का अर्थ है बहुत रसों का मिलना। आज का किलो ये श्लोक देखें पूरा होता, कल के श्लोक छोटे हैं, तो अगर ये सब कल मिलाएंगे तो भी पूरा हो जाएगा। सो मैं कहने ये जा रहा था आपसे, रस जो शब्द है ना, इस रस को प्रकट होने के लिए पांच भाव इकट्ठे होने चाहिए। स्थाई भाव, स्थाई भाव हमारा शांत दास्य सखा वात्सल्य और माधुर्य, इनमें से कोई एक स्थाई भाव होता है। स्थाई भाव में विभाव, इसका मतलब स्ट्यूमुलेशन, उस भाव को उत्तेजित करने के लिए आलिंबन है कृष्ण, और उद्दीपन है भक्त। भक्त के हृदय में कृष्ण को कोई चेष्टा, कोई कार्य, कोई रूप, कोई बांसुरी, कोई गाय, उसको देख के उद्दीपन होता है, उजागृत होता है, तो उसको कहते हैं विभाव। विभाव, विभाव से एकदम होता है दूसरा अनुभव। इसका मतलब उस वक्त क्रिया करता है, जैसे मानो के कृष्ण को बांसुरी बजाते देखा तो उसके पीछे भागता है अथवा उसको स्तंभित होकर सुनता है, ये अनुभव हो गया। और फिर होता है, ये है वॉलंटरी। फिर होता है अष्ट सात्विक भाव, वो होते हैं इनवॉलंटरी, अपने आप आंखों से अश्रु आते हैं, स्वत कंपन हो जाती है। और फिर होते हैं संचारी भाव, वो 33 प्रकार के हैं। वो संचारी भाव है, ये इमोशन है, बहुत प्रकार के इमोशन है, कभी क्रोध आया, कभी प्रेम हुआ, कभी क्या किया। ये जब सब पांच मिलते हैं तब रस बनता है। रस को बनने के लिए पांच ये भाव चाहिए। तो यहां ऋषि गोस्वामी लिखते हैं रास का अर्थ है रसों का मिलन, और ये आनंदमय उत्सव है, और ये अच्छी तरह से इसका शुभारंभ हुआ। कृष्ण ने, कृष्ण जो आनंद घन है उत्सव का, आलंबन कृष्ण है, और उद्दीपन जो है, तो यहां आलंबन उद्दीपन फिर आश्रय और विषय होता है। तो ये है सर्व उत्तम लीला। कृष्ण चारों के उत्सव क्या है कि चारों ओर के कृष्ण के चारों ओर गोपियां ही गोपियां दिखाई दे रही। और ये सुंदर कैसे लगा है कि स्वर्णमय आभूषण के बीच में वो वैधुर्य मणि जड़ी हुई है। और इसका पराशर ऋषि ने इस श्लोक में वर्णन किया है, ये श्लोक दिया हुआ है जीव गोस्वामी पाद ने। रास मंडल बंधो अपि कृष्ण पार्शवम अनुजहाता गोपी ने नैवा भो नैवा बभोद एक स्थान स्थिरात्मना हस्ते न ग्रहया च एकाकाम गोपी नाम रास मंडले चकार तत्कर स्प्रश निमिलित। जैसे भगवान का हाथ का स्पर्श होता है, निमली तड़म हरि ही आंख बंद कर देती हैं गोपियां। तथा प्रवृत्ते रास चलद वलय निस्वंत अनुयाय शरत काव्य केह गीति ही अनुक्रमात। रास मंडल में एक जगह भगवान नहीं रहते हैं, क्योंकि भगवान गोपियों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए नृत्य चलता रहता है, कृष्ण के साथ साथ चलती हैं और मंडल में चलती हैं, एक एक दूसरा का हाथ पकड़ के चलती हैं। और गोपियों ने हाथ कृष्ण के स्पर्श से हाथ आंखें बंद कर दी और रात रास लीला का शुभारंभ हो गया। और फिर गोपियों के, ये अगले श्लोक में आएंगे कि कंगन हाथों के बैंगल और पांव के जो जो झांझर थे वो सब उनका आवाज होने लगा और मधुर गीत गाने लगे शरत ऋतु में। और ये ऋतु कौन थी, शरद ऋतु का गीत गाने लगे। मध्य द्वयो द्वयो मीन्स दो दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण। ये छठे श्लोक में पहले जैसे कहा कि सफारी, हाँ, जैसे स्वर्ण आभूषण में मंडित होता है। और बिल मंगल का श्लोक जो है हम पढ़ के आए हैं, वो जीव गोस्वामी पाद ने यहां दिया है। और क्रम दीपिका में शुद्र श्याम उभयो हो पृथिग अनंत अंतरगम, वहां भी लिखा है दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण खड़ा थे। इसलिए गोपी कृष्ण के पूजन का वर्णन है, गोपी कृष्ण दो गोपियों का नहीं, एक कृष्ण के साथ एक गोपी। एक ही पुरुष था और अनंत गोपियां थी जो भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहती थी अनुराग के कारण। यह अनुराग कौन सा स्तर है प्रेम का, प्रेम भाव प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, सातवां स्तर है। हमने भक्ति रसामृत सिंधु में प्रेम से पहले के आठ स्तर पढ़े हैं, आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव। अब भाव, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, फिर महा मदनाख्य महाभाव, वो राधा रानी का केवल स्वरूप है। तो ये ऊपर का स्तर है। अनुराग के कारण, अति अनुराग के कारण सभी गोपियां भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहती थी। अगर भगवान से अलग हो जाएंगे तो उनका सुख, उनके आनंद में बाधा पड़ जाएगी, इसलिए हरेक समझ लीजिए कृष्ण हमारे साथ है। तो भगवान ने रास नृत्य क्रीड़ा शुरू की सबको आनंद देने के लिए, और इसलिए रास बड़ा महा उत्सव है, महारास कहते हैं इसको। बहुत विशेष भगवान नृत्य कर रहे थे, कहते हैं कालिया के फणों के ऊपर, जब 99 फणों के ऊपर कृष्ण नृत्य कर रहे थे तो आंखें मार के गोपियों को बता रहे थे कि देखो बिना किसी मंडल के ऊपर मैं ऐसे फण के ऊपर नृत्य कर सकता हूँ, तो आने वाली शरद ऋतु के पास मैं आपके साथ जब नृत्य करूंगा तो इसका आप सब आनंद लीजिएगा। तो भगवान का नाम है नटवर, कृष्ण स्वयं भगवान के लिए चार शब्द विशेष है, नित्य किशोर, नटवर, गोप वेशधर, वेणुकर। ये चेतन महाप्रभु कहते ये है स्वयं भगवान। नटवर है, नटराज तो है शंकर जी, पर जो नटराज जिसका वर्ण करे, जिसको अपना गोपी बन के आए और कृष्ण का गोवरास में प्रवेश करके उसको अपना स्वामी मान ले, उसको नटवर कहते हैं। नटराज के लिए भी जो वर्ण है वो नटवर है। और ब्रज में कृष्ण चलते हैं तो उनका चलना ही नृत्य है, वो ये दो पांव एक समय रखते ही नहीं धरती पे, उनका बोलना गाना है और उनका चलना नृत्य है। तो ये जो लिखा है हर गोपी के साथ कृष्ण था, परंतु वो समझ रही थी कि हमारे साथ ही और किसी के साथ नहीं है। बोला ऐसे क्यों लगा? बोला ये अति आनंद के कारण, ये आनंद में इतनी विभोर थी कि उनको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कृष्ण दिखाई देता, आंखें बंद थी और अंदर में ही मेरे साथ कृष्ण है और किसी के साथ नहीं है। क्यों ऐसे कैसे कृष्ण कर सके? क्योंकि वो योगेश्वर है, वो अपनी योग शक्ति से ये सब कुछ कर सकते हैं, उन्होंने ऐसे किया। अचानक इस रास नृत्य के उत्सव को देखकर, जो कभी होता नहीं है स्वर्ग में, सारे देवता उसको देखने के लिए आए अपने अपने विमानों में। ये हमने पढ़ा, यहां ब्रह्मा के साथ शंकर जी का भी नाम लिखा है, परंतु वो दास्य रस के थे, इसको देख नहीं सके। चौथे श्लोक को पढ़ते हैं, फिर आज का कथा को विराम देते हैं। ततो दुम दुभ्यो ने दो निपेतो हो पुष्प वृष्टयः जगोः गंध्रवः पत्यः सा स्त्री का तदा यशो अमलम। ततः जब नृत्य शुरू हुआ, अब नृत्य शुरू हुआ तो कोई बजाने गाने वाला भी तो होना चाहिए ना। ततः उस समय, उसके बाद जैसे नृत्य शुभारंभ हो गया, राधा रानी ने अनुमति दे दी, गोपियां मंडल में खड़ी हो गई, कृष्ण प्रविष्ट हो गया और नृत्य शुरू हो गया, तो दुम दुभी बजी। किसकी? ने दुम दुभियां बजी, निपेतो दुमदुबियां बजाई देवताओं ने, और ऊपर से किया पुष्प वृष्टि ही। अपने अपने बहुत से मंदिरों में देखा होगा, अहमदाबाद मंदिर में अगर आप गए हो तो जो भगवान के अल्टर के सामने बाहर जो मंडप है दर्शन का, उसके ऊपर बहुत विशाल एक गोल गुंबज बना हुआ है, और उस गुंबज के अंदर नीचे राज एक एक गोपी के साथ एक कृष्ण नृत्य कर रहा है, और ऊपर आकाश का पूरा बिल्लू चित्र बना है, उसके ऊपर से पुष्प वृष्टि हो रही है। वो पूरा ऐसे आप ऊपर देखेंगे तो वो रासलीला का बहुत सुंदर दृश्य वहां बनाया हुआ है। आप में से जो अहमदाबाद मंदिर कभी गए हैं तो ये ऊपर में बहुत सुंदर इस न, 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 देवता ऊपर से कैसे पुरुष वृत्ति कर रहे हैं, अपने विमानों में खड़े हैं, उसको पूरे का दर्शन वहां दिखाया हुआ है। अब पुरुष वृष्टि हो रही है और दुमदुबियां बज रही हैं, तो फिर अब क्या जाना होना चाहिए, अब गाना होना चाहिए ना। जुगुहु गाने लगे, कौन सबसे अच्छा गाने वाले है, नृत्य करने वाले, गंधर्वा पत्या, गंधर्व पति चित्ररथ, गंधर्वों का पति, गंधर्वा नाम चित्ररथ अस्मि, भगवान कहते गंधर्वों में चित्ररथ हूं, ये गंधर्वों का पति गाने लगा। स स्त्री कहा, अपने पत्नियों के साथ उन्होंने गाना शुरू किया। तत् यशो अमलः, तत् ये कहते हैं तद पदार्थ, तद त्वम पदार्थ दो होते हैं, तत् त्वम, ये तत् शब्द कृष्ण का सूचक है, तो तत् पदार्थ, त्वम तो जीव होता है, तत् भगवान होता है, तो भगवान श्री कृष्ण तत् वो क्या कर रहे थे, क्या ये सब लोग उसके ऊपर संदेह कर रहे थे कि ये पराई स्त्रियों के साथ नाच रहा है, नहीं नहीं, यश अमल, जिसका यश अमल है, बहुत ही पवित्र है, पवित्र यश वाले श्री कृष्ण उत्तम श्लोक की इस रास लीला में दुमदुमिया बजापे के पुष्प वृष्टि करके और सुंदर गीत गा के कृष्ण के यश अमल यश की का गान कर रहे थे। और ये जो जगन्नाथ अष्टकम का पहले श्लोक में लिखा है, भगवान जब कदाचिंद कालिंदी तट संगीत रवो, ये रासलीला का असल में वर्णन है, कभी जमुना के किनारे भगवान श्री कृष्ण बांसुरी को बजाते हैं और गोपियां आती हैं और मधुपा, वो मधुपा, मधुपा कहते हैं मधुमक्खी नहीं, मधुपा कहते हैं भौंरे को जो कमल के फूलों को चूमता है, और ये गोपियों को चूमता है और उसका गान करते हैं, उसकी महिमा गाते हैं, सुख देव शंकर ब्रह्मा गणेश आदि सुख, ये शब्द पहले श्लोक को पढ़ के देखें। अब जब इतने बड़े देवता उसको देख के आनंद धोके उसके अमल यश को गा रहे हैं और इस दुनिया के कीड़े कीट पतंग से भी नीचे तुच्छ लोग ये कहे कि कृष्ण रासलीला कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, तो ये कितनी मूर्खता है, बहुत बड़ी घृणा आती है ऐसे लोगों के ऐसे सोच के ऊपर, ये देवता जिनकी पूजा करते हैं वो मूर्ख और उन्हीं को मानते हैं, और जो देवता जिसकी महिमा गाने के लिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं पुष्प, वो उस भगवान के प्रति उनको विश्वास नहीं है, क्या मूर्खता है। तो दुमदुमियां बजने लगी आकाश में, पुष्प वृष्टि होने लगी, गंधर्व पति अपनी पत्नियों के साथ गाने लगे, तो कौन सा यश है कृष्ण का यहां रास विहार का, और ये कैसा है, प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं ये आध्यात्मिक शुद्ध आनंद है, ये सच्चित आनंद है, और इस ब्रह्मांड के संचालन के बड़े बड़े देवता आनंद में विभोर होकर रास को देखते हुए जो धर्म की परिकाष्ठा है जो भौतिक जगत में विकृत और दूषित काम है उससे उसकी गंध भी जिसमें नहीं है उसकी महिमा गा रहे हैं। श्री राजीव गोस्वामी लिख रहे हैं देवता और अन्य तत उन्होंने अपनी दुमदुमिया बजाई। बजाई नहीं लिखा है, अपने आप बजने लगी, क्योंकि वो दिव्य वाद्य है, उनको बजाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए वसुदेव का एक नाम है भगवान श्री कृष्ण के पिता का, अनंक दुमदुभी। इसलिए कि जब वसुदेव का प्रकट हुआ तो आकाश में देवताओं की दुमदुमियां और आनक, वो ढोलक ढोलक और दुमदुमियां अपने आप बजने लगी कि ये आ गया, तो अब कृष्ण का अवतार होने वाला है। उसका नाम ही अनंक दुमदुभी पड़ गया। तो जहां जीव गोस्वामी कहते हैं उन्होंने बजाई नहीं, अपने आप बजने लगी, क्योंकि वो दिव्य वाद्य है। क्यों बजने लगी? बोला इतना बड़ा महा उत्सव हो रहा है, रास महा उत्सव हो रहा है, अब नहीं बजेंगे तो फिर कब बजेंगे? अब नहीं बजें तो हमारा अस्तित्व का कोई महत्व ही नहीं है। आगे जब ढोल आदि का वर्णन आएगा, मृदंग का वर्णन आएगा, तब भी ऐसे ही समझना चाहिए। और यहां ये दिव्य हैं सब। पहले दुमदुमियां बजी, नगारे बजे, ये मंगल सूचक है, ये गोपियों को इकट्ठा करने के लिए बजे। फिर पुष्प वृष्टि हुई, और ये पुष्प वृष्टि से पूरा रास मंडल जैसे गलीचा पुष्पों का बिछ गया। वो पुष्पों के साथ पुष्प, तो रास कहां हो रहा था? बोला धरती पे नहीं, धरती स्वयं जो है दुल्हन की तरह पुष्पों से सज्जित हो गई। हम याद है एक बार रथ यात्रा पहली बार जब मथुरा में की थी प्रभुपाद के 100 साल की शताब्दी में, जिसका आप कभी वर्णन करते हैं, यहां सब रास्ते में जिस बाजार से जा रहे थे सब घरों के ऊपर से इतने पुष्प वृष्टि हुई कि सारे रास्ते में केवल फूलों के ऊपर रथ चला था कि कृष्ण बलराम पुनः वृंदावन में आ गए। एक लोगों के अंदर अपने आप, अब फिर भी दो बार हमने की, वो भाव कभी दोबारा नहीं आया, लेकिन उस बार जो भाव आया था, तो रास मंडल में इतनी पुष्प, और ये पुष्प कोई हमारे नहीं है, दूसरे दिन सड़ जाते हैं, क्योंकि रास तो ये चलेगी ब्रह्मा जी की रात तक। ये पुष्प तो दिव्य थे, जिसकी सुगंध भी थी और जो कभी मुरझाते भी नहीं थे, और उनसे पूरा रास मंडल सुशोभित हो गया। गंधर्वों ने गाना शुरू किया अपनी पत्नियों और अप्सराओं के संग में, और वो सब कृष्ण के गुणगान कर रहे थे, कृष्ण के अमल चरित्र का गुणगान कर रहे थे। अब ये एक लाइन जीव गोस्वामी लिखी है, वैसे तो वो देवता के स्तर है, लेकिन इस वक्त उस वातावरण से, उनके हृदय से भी काम आदि की वासना पूर्ण रूप से लुप्त हो गई थी, वो पूर्ण शुद्ध भाव से कृष्ण की महिमा गा रहे थे। इससे ये संकेत वैसे भी मिलता है कृष्ण की महिमा, जैसे हम हरे कृष्ण मंत्र गाते हैं, चेतो दर्पण मार्जन कर देता है, और फिर कोई बुरा विचार आ ही नहीं सकता है अंदर। तो यहां हमारा ये 2 श्लोकों का आज का पाठ पूरा हुआ। कल फिर आगे यहां से जैसे कृष्ण बलराम की इच्छा होगी वो कथा करेंगे। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु अभिषेक। और धन्यवाद करते हैं हमारे श्री वल्लभ प्रभु का, उन्होंने हमको ये सेवा का सौभाग्य दिया। तुलसी गोविंद प्रभु ये नित्य भागवत का शुभारंभ किया था, और कुछ दिन पहले यहाँ मैं समझता हूँ अभी बिरजनी नाथ वहाँ पहुँचे नहीं हुए, आए थे वृंदावन में 2 साल के बाद, उनका दर्शन भी हुआ, और सारे भक्त जो प्रेमी आप लोग ये नित्य भागवत का कार्य कर रहे हो, निश्चित रूप से ये आपकी भक्ति को वृद्धि करेगा, और आपके ये मानव जन्म में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लक्ष्य को आप श्री प्रभुपाद की और गुरु वर्ग और वैष्णव की कृपा से प्राप्त करें, क्योंकि ये नित्य भागवत ही हमारा जीवन होना चाहिए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत बहुत ही सुंदर और सरलता से आपने भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की लीला को हमें समझाया, माँ पे बहुत आभारी है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। अगर किसी को कोई भी प्रश्न हो, कोई भी कमेंट्स हो प्रभु, आप प्रभु से पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, या आपको अनम्यूट भी कर सकते हैं अपने आप को और प्रश्न पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा
धन्यवाद प्रभु,
धन्यवाद प्रभु।
प्रभु ये देवता लोग लास्यला को देख पाए या ओनली कृष्ण को ही देख रहे?
यही लिखा है आचार्यों ने कि वो गोपियों के भाव को देखने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि दास भाव के हैं। न दास भाव के देख सकते हैं, न सखा भाव के देख सकते हैं, न वात्सल्य भाव के ही देख सकते हैं। माधुर्य लीला केवल मंजरियां ही देख सकती हैं और कोई नहीं देख सकता है। माधुर्य भाव के ही देख सकते हैं। वो केवल कृष्ण का अद्भुत नृत्य देख रहे थे। संभवत है गोपियां अगर दिख भी रही होंगी तो आलंगन आदि कुछ नहीं दिख रहा होगा, इससे ये ध्वनित हो रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये बहुत दंडवत बेटा।
प्रभु जी ये क्वेश्चन था कि जैसे अभी आपने इसमें कथा में कहा था कि चांद एक ही होता है और उनकी रोशनी जैसे सबको ही मिलती है, तो चांद और चकोर, चकोर का इसमें क्या मीनिंग था? शायद मेरा
चकोर का मतलब भगवान से प्रेम करने वाले लाखों हो सकते हैं लेकिन भगवान एक है और सबको ही अपना प्रेम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण अब गोपियों के बीच में रास कर रहे हैं, हम भक्त अगर उनको याद करेंगे तो हमारा नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं है। हर भक्त के लिए एक कृष्ण है और नवीन कृष्ण है, रोज नए रूप में आता है। ऐसा नहीं है एक बार देख देख के थक जाएंगे, वो नित्य नवीन है। अब गोपी से एक मिनट पहले जो उन्होंने नृत्य किया है, दूसरे मिनट में वो दूसरे ही दिखते हैं। इसलिए प्रेम में वृद्धि होती रहती है, कभी कम होता ही नहीं है। तो हर भक्त के लिए एक विशेष कृष्ण है, ये कृष्ण की कृपा है और यही कृष्ण का योगेश्वर होने का अभिप्राय है या माना है, अतः अर्थ है। चांद कृष्ण चंद्र एक है लेकिन हम भक्त अनेक हैं और सबकी भक्त अपनी भावना पूरी करते हैं। सब कृष्ण भावना भावित हो जाए तो भगवान श्री कृष्ण सबके लिए उपलब्ध हैं। चकोर बन जाओ, चकोर बन जाओ।
धन्यवाद सर्वभौमिक प्रभु, दंडवत प्रणाम।
धन्यवाद, हरे कृष्ण प्रभु।
बहुत सुंदर आपका ये आज का पाठ था, जैसा हर समय होता है। प्रभु जी कहते हैं कि कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ते नहीं है,
अभी भी यही रहते हैं, रोज मिलते हैं।
तो आपके जो शुद्ध भक्त से मिलते हैं।
नहीं तो यहाँ अभी फल भेजा है, वो पड़ा है आपको दिखाऊं तो, अभी फल भेजा है भगवान ने, उनको भोग लगा था, फल आया है। हरे कृष्णा।
तो प्रभु जैसे आप कहते, जैसे ब्रह्मा की रात पूरी लीला होती है, ये रासलीला, तो आज भी कृष्ण की रासलीला होती है और
अभी भी हो रही है, लेकिन उसको देखने के लिए प्रेम मंजन चरित होना चाहिए। आज भी ये हो रही है, रोज की हो रही है, ये तो नित्य है भगवान का, ये भी एक लीला नित्य लीला है। आज भी ब्रज में हो रही है, बिल्कुल हो रही है, सब नित्य लीला है, इस अप्रकट रूप में हो रही है।
और निधिवन में जो शाम के बाद वहां जाना मना है,
वो अभी भी वहां कोई नहीं जाता है, कहते हैं वहां रोज भगवान की लीला होती है, वहां मिलन होता है गोपियों का। और ये तो बहुत दूर की बात नहीं है, जब यहाँ जीव गोस्वामी थे तो श्यामानंद जी को वहां राधा रानी की वो पायल मिली थी जिससे उनका तिलक बनाया, और ललिता उनको लेने आई थी, तो वो वहाँ नृत्य करने आती हैं, तब कुछ गिर गया था। ये तो जीव गोस्वामी के समय की बात है।
धन्यवाद।
हरे कृष्णा। आइए आइए वृंदावन में रहिए, इधर रहिए, एक दिन कभी ना कभी रास में, नहीं तो ही कहीं घास में हमारा जीवन सफल हो जाएगा। वृंदावन की सीमा के ऊपर ब्रह्मा घास बनना चाहता है, उद्धव गुलम लता बनना चाहता है, हम कुछ भी नहीं बने पड़े रहे तो भी एक दिन हमारा कल्याण हो ही जाएगा। हरे कृष्ण, आइए 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 ब्रज में।
धन्यवाद 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 आपका आमंत्रण के लिए, कोशिश जरूर करेंगे।
हरे कृष्ण, आइए आइए।
हरे कृष्ण।
बोलिए प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं करुणामयी बोल रही हूँ नवलगढ़ से।
करुणामयी नवलगढ़ से, वहाँ अच्छा घर में आई हुई है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे
कृष्णा। अभी हो तो दबोई हूँ, पर आपसे बस आपकी आशीर्वाद चाहिए।
बहुत बहुत ठीक है। छोटू दोनों उधर हैं, दुबई?
हाँ दुबई है सब,
जोड़ा दुबई है। चलो ठीक है, छोटा जुड़वा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा।
धन्यवाद मैया। सो कृष्ण बलराम की जय, रासलीला की जय, राधा श्याम की जय, गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय।
हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत बहुत एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके इधर दामोदर देश यात्रा में इंतजार कर रहे हैं कि आप आएंगे। जब आप आते हैं तो लगता है वृंदावन भी साथ में लेके आते हैं, तो वेट कर रहे हैं आपका।
कृष्ण 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 कृष्ण, कोरोना को जाने को दो, तो कृष्ण करुणा करेगा तब आएंगे जब। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण दादा। हरे कृष्ण, क्या
ठीक है? ठीक है प्रकाश, खुश आनंद जन्माष्टमी वञे पोइ ॾिसूं था। धन्यवाद धन्यवाद सब जो, बहुत बहुत धन्यवाद। रोके मेरे ख्याल में बड़े बड़े आजकल आपके पास विद्वान कथा कर रहे हैं, हम तो है मूर्खानंद। आपको समझ में आ रही है हमारी भाषा? हरे कृष्णा। आज तो हमने आपको वो सामने खोल के रखा था आपके पास, जहां से हम पढ़ के आपको सुना रहे हैं जो आचार्यों की भाषा। धन्यवाद हमारे महेश जी हैं। महेश है कि नहीं? आज महेश थे कि नहीं थे? आडवाणी जी, ओके। श्री प्रभुपाद की जय। कल मिलेंगे।
हरे कृष्णा प्रभु।
कल मिलेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, और जल्दी ही वापस आपसे सुनने की प्रतीक्षा करेंगे।
कल तो हमारी सेवा आपकी है, लेकिन उन श्लोकों में इतना ज्यादा तात्पर्य नहीं है जो कृष्ण की कृपा होगी कहेंगे।
हरे कृष्ण प्रभु। आपके आपका हर चीज, आप जो भी कहते हैं मधुर वाणी होती है, और एकदम हम लोग बैठ जाते हैं, स्थिर बैठ जाते हैं कि सुनने के लिए, और भी इच्छुक होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु।
हरे कृष्ण। परमानंद गौर प्रभु है कि नहीं?
मायापुर में प्रभु।
ओके। हरे कृष्ण, जय हो।
अभिषेक प्रभु, और कुछ अनाउंसमेंट करने हैं आपको?
नहीं सर, भक्तों से निवेदन है